हमें भी। मोक्ष को ही यह संस्कृति परम पुरुषार्थ कहती है। वह मोक्ष क्या है? आत्मा को स्वतंत्र बना देना ही मोक्ष है। कर्तव्य का आचरण करते करते मन, बुद्धि और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार के पवित्र मन और बुद्धि में आत्मा की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। वह आत्मा हमें कहीं बाहर से लेने नहीं जाना पड़ेगा, वह तो सबके पास है। परंतु मन और बुद्धि अपवित्र होने से उसे ग्रहण नहीं कर पाती। जब कर्तव्याचरण द्वारा मन बुद्धि पवित्र हो जाती है, तब आत्मा का दर्शन होना सुगम हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह संसार तो प्रश्नों और समस्याओं का जंगल है। यह कैसे पहचाना जाए कि अमुक कर्तव्य है और अमुक धर्म है, जहां कार्यों की श्रृंखला सामने खड़ी है। बहुत से कार्य कर्तव्य कोटि में आते हैं, बहुत से त्याज्य हैं। सामान्य मानव बुद्धि यह कैसे समझे कि यह करना चाहिए और यह छोड़ना चाहिए? इस प्रश्न के अनेक समाधान भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं। अनेक ऐसी पहचान निश्चित की गई है। कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करने वाले पाश्चात्य आदि भौतिकवादी पहले उन कार्यों को कर्तव्य कोटि में रखते थे जो सत्र मनुष्यों को लाभ पहुंचाने वाले हों। ऐसी परिभाषा बना लेने पर उनके सामने जब यह प्रश्न आया कि कोई कार्य ऐसा नहीं जो सभी मनुष्यों को लाभ ही लाभ पहुंचाता है, किसी न किसी को किसी कार्य में हानि भी अवश्य होगी। चोरी को अपराध घोषित करना शायद चोरों को नागवार गुजरेगा। रोगियों की संख्या में कमी होना डॉक्टरों की रोजी छीनना होगा। भ्रातृभाव और बंधुत्व की वृद्धि और द्वेष का अभाव होने से वकीलों की जीविका का प्रश्न आ जाएगा। शायद कोई वकील यह नहीं चाहता होगा कि मेरे मुवक्किल आपस का झगड़ा भूल जाए। ऐसी ही स्थिति में अच्छा से अच्छा माना जाने वाला कार्य भी कर्तव्य और धर्म न हो सकेगा, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों की पूर्व परिभाषा के अनुसार वह सब लोगों का हित संपादन नहीं करता। इस प्रश्न के सामने आने पर पश्चिमी विद्वानों ने अपनी परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि धर्म वह है जो अधिकांश मनुष्यों को अधिक लाभ पहुंचाने वाला हो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीतारहस्य ग्रंथ में इस प्रकार के समस्त पाश्चात्य मतों को सामने रखकर उनकी आलोचना प्रस्तुत करके यह सिद्ध कर दिया है कि धर्म धर्म या कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय भौतिक दृष्टि से कथमपि संभव नहीं। उसके निर्णय के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि को ही अपनाना होगा। भौतिक परिभाषा में उन्होंने अनेक दृष्टांतों से दोष दिखाए हैं। मान लीजिए कि गर्मी में त्रिपार्तजनों की प्यास बुझाने के लिए किसी ने प्याऊ लगाया। लोग उसके प्याऊ पर आते हैं और सुखादु शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके प्याऊ पर जल पीने वालों की भीड़ देखकर सामने वाले दुकानदार वनिये ने भी एक प्याऊ खोल दिया जो पानी के साथ चने भी खिलाता है। वनिये का उद्देश्य लोगों को जल से त्रिप्त